ஓம் சாந்தி.
ஓம் சாந்தி. பாபா கா யே கர் பாண்டவ பவன் படா அன்மோல் ஸ்தான் ஹை. சார் தாம் சப்சே படா தீர்த். ஜப் ஐசா கோய் சப்த போல்தே ஹை தோ ஏக் அலக் சி ஃபீலிங் ஆதி ஹை. ஆர் यहाँ के बच्चों की ये जो भावना कि हमें भगवान मिला है वो बहुत बढ़ जाती है. बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? वैसे तो हम सभी ने भगवान को पाया है. यहाँ बैठे भाई बहनों में से जिसको ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को पाया है वो जरा हाथ उठाएं. लंबा बड़ा हाथ. सचमुच पाया है? सचमुच? अच्छा, दुनिया में किसी को जाके बोलो कि हमें भगवान मिला है तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये मुंह और मसूर की दाल. हाँ, इतने साधारण दिखते हो. अरे भगवान को मिलना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है. कितनी तपस्या करनी पड़े उसके लिए. हाँ, एक साधु हमारे सेंटर पे आए हुए थे. काफी उम्र थी उनकी और अच्छे साधक भी अच्छी साधना की हुई थी उन्होंने. तो आए और अपनी बात सुनाने लगे. तो जब कोई इतना बड़ा साधु अपनी बात सुनाए तो हमें क्या करना चाहिए? शांति से उनको सुनना चाहिए. सुनाते रहे आधा घंटा पौना घंटा. जब वो थोड़ा सा थमे तो हमने कहा हम भी कुछ सुना सकते हैं आपको? कहा हाँ हाँ सुनाओ. तो हमने कहा कि हम भगवान के बच्चों ने, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ये महसूस किया है कि भगवान धरती पे आ चुके हैं. तो कहा बस अब इससे आगे कुछ मत बोलो. कहते हैं आम खाना तुम्हारा काम है, आम खा लो, लेकिन आम के बगीचे का भाव पूछना वो तुम्हारा काम नहीं है. सुना? मतलब कोई जाए और कहे कि आम का बगीचा मुझे खरीद लेना है तो वो वाला काम मत करो, आम ही खाओ. तो कहा भगवान इतनी बड़ी हस्ती, वो आएगा जाएगा क्या तुमसे पूछ के आएगा जाएगा? ऐसा उनके बारे में सोचना उचित नहीं है. बड़ा बचपना है. भगवान तो बहुत बड़ी हस्ती है. हम उनके चरणों के धूल तक भी पहुंच जाएं ऐसा नहीं हो सकता है. ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि उनके चरणों की धूल कभी हमें नसीब हो जाए. सोचो जब वो इतने बड़े साधु ये सब बातें कह रहे थे तो हमें कैसा लग रहा होगा अंदर से? क्या लगना चाहिए? इनको बाबा का मालूम नहीं है. और क्या लगना चाहिए? बिल्कुल. क्या लगना चाहिए? उस समय जो फीलिंग आई वो ये कि क्या भाग्य है हमारे. भगवान की दृष्टि हम पे पड़ी. क्या था हम में? ना हमने तपस्या किया है. इतने इतने से थे जब ज्ञान में आ गए. इस जन्म में तो कुछ भी तपस्या नहीं किया है, लेकिन घर बैठे मिले कैसे भगवान? बहुत लोग अनुभव पूछते हैं आपको बाबा कैसे मिले, भगवान कैसे मिल गए? उससे पहले के अनुभव सुनाओ, भगवान के मिलने के बाद का अनुभव सुनाओ. क्या परिवर्तन आया? क्या हुआ? अज्ञान काल की जिंदगी क्या थी? ज्ञानी बनने की जिंदगी क्या है? हमसे कोई पूछे तो हम तो बहुत छोटे थे इसलिए बाबा से मिलने के पहले की तो कोई बात याद नहीं. जब से होश संभाला है तब से भगवान को पा लिया है. लेकिन कैसे पाया उसकी थोड़ी स्मृति है और वो जो स्मृति है वो बहुत ताकत देती है, आंतरिक ताकत. हमारे पिताजी डिफेंस में थे और उस साल हम लोग गांव में गए हुए थे और पिताजी हमारे बिना वहां 6-7 मास रह गए और 6-7 मास के बीच में उनको ज्ञान मिला. शॉर्ट में यही कि बहुत ज्यादा खाने पीने वाले और लाइफस्टाइल उनका बड़ा अलग. और ज्ञान मिला जिस दिन, एक दिन में चेंज हो गए. राखी का दिन था, गए ध्यानी दादी ने राखी बांधा और जब खर्ची देने लगे तो कहा हम ये खर्ची नहीं लेते, तो क्या खर्ची दें? कहा जो हम कहेंगे वो देना हो तो दो, नहीं तो ये खर्ची हमें नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? कहा 7 दिन बाबा के घर में आना, 7 रोज का कोर्स करना और वो पूरी धारणाओं के साथ। सुना? अभी ज्ञान सुनाते हैं तो धारणा साल तक भी नहीं सुनाते हैं, है कि नहीं? 1 साल चलो चले जाओ, कैसे भी बाबा के घर में आ जाए। लेकिन दादी ने ज्ञान सुनाया और ज्ञान क्या सुनाया, पहले ही दिन क्या कहा, एक चीज मांगते हैं भगवान के घर में 7 दिन के लिए आना और पूरी धारणाओं के साथ। क्या है धारणाएं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण, सत्संग, ठीक है कि नहीं? तो ये चारों धारणाएं पूरा पक्का करना, बाहर का कुछ खाना नहीं और ऐसा वैसा कोई भोजन नहीं करना है, कुछ क्या कहते हैं ऐसा वैसा देखना नहीं, टीवी नहीं देखना है, सिनेमा नहीं देखना है, कोई नॉवल नहीं पढ़ना है, मन को इधर उधर करने वाली कोई भी बात नहीं हो और पूरी धारणाओं के साथ 7 दिन कोर्स कर दिया हो, ये आपके लिए राखी की खर्ची है। तो पिताजी ने कहा हाँ, अब बोल तो दिया हाँ, लेकिन हमारी माताजी सुनाती हैं कि हमारे यहाँ गुरुवार को थोड़ा उनको इच्छा होता कि नॉनवेज नहीं खाएं, लेकिन कोई ऐसा गुरुवार नहीं गया होगा जब पिताजी नॉनवेज नहीं खाते होंगे और पीना भी उसके ऊपर से, लेकिन बोल के आए हैं तो 7 दिन में वो सारी रीत निभाई। सुना? पूरी जो पूरा वायदा किया था, जो खर्ची दी थी, 7 दिन तक निभाया और वो 7 दिन आज 40 साल हो गए ठीक। और उनमें परिवर्तन आया और वो गांव में आए, तब उनको परिवर्तन हुए 3-4 महीना हो गया होगा, 4-5 मास जैसे हो गया है। और जब गांव में आए तो सबने कहा भी ये, जब आए तो गांव वालों ने तो खूब सोच के रखा था, पता नहीं क्या क्या आएगा, और कुछ लेके जाए नहीं लेके जाए, लेकिन 3x रम की 3-4 पेटियां जरूर जाती थी। तो बहुत लोगों को बड़ी आशा बड़ी उम्मीदें कि अब आ रहे हैं तो कुछ होने वाला है, लेकिन जब गए तो एकदम खाली हाथ, कुछ भी नहीं। और जाके घर में कहते हैं हम तुम्हारे मटके का पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि उसको तुम लोगों ने हाथ लगाया होगा और खाना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी माता जी को अंदर से बड़ा आनंद आ गया, पर गांव बाकी जो माताएं थी गांव में, हाँ उनकी क्या कहें, सास ननद जो भी लगते होंगे सब लोग, सब आए और कान में बोलने लगे अब तो तेरा संसार डूब गया, 3-3 बच्चे हैं तेरे, अब तू कहाँ जाएगी, तो सन्यासी हो गया, तेरा संसार बर्बाद हो गया। माता जी ने मन ही मन कहा कि कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन जो हुआ है मैं उसको सेलिब्रेट करूं। तो माता जी ने क्या किया, सारा बर्तन टिंडा सब चेंज कर दिया, सब निकाल के फेंक दिया, सब नए निकाल दिए, नए लगा दिए। सुना? और कहा कि हाँ हम सात्विक बन करके आपके लिए ड्रेस भी नया चेंज करके पहनते हैं, सारे घर की लिपाई भी कर देते हैं, और उस समय कच्चा मकान था गांव में, हाँ तो सब चेंज करके हम आपके लिए भोजन बनाते हैं, आप खाओ। तो जैसे भी हो, फिर उनको ये लगे कि ये तो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, इसके हाथ का कैसे खाऊं, तो जो भी हो, लेकिन फिर भी घर में सब सफाई वफाई करके, वहां तो फिर आर्मी में खाते थे तो खा लिया। और मुझे जो याद आ रहा है, शाम को हमारे पास बैठे तो हमने कहा डैडी अब आपको हमको छोड़ के नहीं जाना है, या तो आप हमारे साथ रहोगे नहीं तो हम आपके साथ चलेंगे, सब बच्चों के डैडी हैं और हमारे पास डैडी नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्या था वो उस समय, ना दृष्टि जानते थे, ना आश्रम देखा था, ना शिव बाबा क्या पता है, ना ज्ञान पता है, क्या दृष्टि दिया और कहा कि अच्छा ये पिताजी से तुम्हें बहुत प्यार है। हमने कहा संसार में सबसे ज्यादा प्यार हमें अपने पिताजी से है। तो कहा ये पिताजी तुम्हारे साथ स्कूल में अंदर जा सकते हैं, क्लासरूम में बैठ सकते हैं, जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो पास में नहीं आ सकता है, लेकिन एक और पिताजी हैं जो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं, तुम क्लासरूम में भी जाओगे तो भी तुम्हारे साथ में जाएंगे, जब भी उनको बुलाओगे बुलाने से पहले आके हाजिर होंगे। और वो जो डैडी हैं वो इस डैडी से बहुत 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 ज्यादा लविंग केयरिंग है, एग्जैक्ट शब्द कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यही थी बात। और जैसे नहीं क्लिक हो गया, संबंध जुट गया बाबा से, बाबा की पहचान हो गई, जीवन परिवर्तन हो गया। उससे पहले का क्या जीवन था पता ही नहीं, याद नहीं कुछ भी, लेकिन एकदम जैसे नहीं निश्चय बुद्धि, 100% निश्चय बुद्धि कि बाबा जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट लविंग एंड मोस्ट केयरिंग फादर जो है वो शिव, वो भगवान है, बाबा है, शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, क्या बाबा है कुछ नहीं पता, लेकिन है वो, और वो मेरा है। क्लिक हो गया, भगवान को पा लेने की अनुभूति हो गई, सुना। उसके बाद हमें तो किसने कोर्स भी नहीं कराया, फिर हाँ क्या हुआ उस समय तो आ गए पिताजी, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद हम लोगों को लेकर के आए, जोधपुर ट्रांसफर हो गया उनका, तो वहां हम लोग गए और ज्ञान में चल पड़े। बीच में कभी कोई संशय आवे, कोई ऐसी बात आए, कभी नहीं आई, और निश्चय बुद्धि बन करके चलते रहे। अब एक बात कुछ दिनों से मन में आ रहा है और मैं सबसे शेयर कर रही हूँ, जो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, उसमें दो कहानियां सुनाने वाली हूँ। वो ये है कि भगवान को पाने के बाद क्या, भगवान को पाने के बाद क्या, कैसे भगवान को पाया जाता है, किस किस ने पाया है, पाने के बाद क्या क्या हुआ है, कहीं ऐसे एविडेंसेस हैं क्या। शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं, हमें भगवान मिले हैं बहुत सहज मिले हैं, बहुत सहज। कभी कभी शुक्रगुजार होने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं, कैसे बाबा को शुक्रिया कहें, क्या कह के शुक्रिया करें। कहां देखो साधु संतों को, हमने बहुत साधु संत देखे हैं, मुझे बहुत शौक रहा साधु संतों से मिलने का, तपस्वी लोगों से मिलने का, साध्वियां होती हैं साध्वियों से मिलने का, उनका इंटरव्यू लेने का बचपन से ही, क्योंकि ये तो पता था ना ब्रह्मा कुमारी बनने वाली हूँ बड़ी होकर के, अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, मतलब इस प्रकार से ही सोचते थे छोटेपन से। तो साधु संतों से भी बहुत प्रीत, जिन्होंने भगवान के लिए जीवन त्याग किया है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट, खाली ऐसे ही नहीं जानना है, क्यूरियोसिटी नहीं, लेकिन अंदर से बहुत रिस्पेक्ट भी रहता कि वो आत्माएं जिन्होंने भगवान के लिए सारी दुनिया को लात मार दिया हो तो वो बहुत महान आत्माएं हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, जीवन की हर कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगी भगवान के सिवाय, सबसे ज्यादा वो मीठा लगा हो, सबसे ज्यादा वो अच्छा लगा हो, तो वो आत्माएं जरूर बहुत महान है, बहुत अलग है। तो इसलिए साधु संत नंस भी मिले, फादर्स भी मिले, मतलब कोई भी धर्म के, वो ये मुल्ला भी मिले, और कई भाई जी सिखों के जो भाई जी लोग होते हैं उनसे भी जो मिले उनके पास जाके बैठ जाना और उनसे बात करना, जानने की कोशिश करना उन्होंने क्या पाया है, क्या कर रहे हैं वो, क्या तपस्या कर रहे। हर कोई ढूंढ रहा है, हर किसी को आभास है उसका, हर कोई उससे प्रीत रखता है, हर किसी को परमात्मा की एक अनुभूति है, लेकिन उनकी अनुभूति और हमारे अनुभूति में क्या अंतर है, वो जो बहुत अंतर है जो मैं समझ पाई हूँ। हमेशा जो कहानी हम सब लोगों को बोलते हैं, 5 अंधे गए थे किसको देखने के लिए, हाथी को देखने के लिए, 5ों अंधों ने हाथी को देखा, अच्छी तरह से देखा, उनसे पूछा गया भाई हाथी कैसा है, क्या बोला, एक ने बोला हाथी खंभे जैसा है, दूसरे ने बोला हाथी दीवार जैसा है, तीसरे ने बोला हाथी सांप जैसा है, चौथे ने बोला हाथी सुपड़ी जैसा है, किसने कुछ बोला किसने कुछ बोला, उनमें से झूठ कौन बोल रहा था, कोई नहीं झूठ बोल रहा था, अच्छा सच कौन बोल रहा था, हाँ जी सच कौन बोल रहा था, जो वो बोल रहे थे वो सत्य था लेकिन कंप्लीट नहीं था, सुना, जो बोल रहे थे सत्य था लेकिन कंप्लीट नहीं था। बस यही अंतर है दुनिया के साधकों में और हमारे में, उन सबने भगवान को महसूस किया दिव्य दृष्टि के बिना। कोई तो है जो रक्षक है, जो सहारा है, जो भरोसा है, जो सर्वशक्तिवान है। जानते हैं, उसे महसूस किया, लेकिन देखा नहीं, कंप्लीट नहीं जानते हैं। हमारे ऊपर बाबा की सबसे बड़ी दया रही कि बाबा ने हमारा दिव्य नेत्र खोल दिया और हमने भगवान को संपूर्ण रूप से देखा और पाया है। हाँ, जिनको ये आभास है कि मैंने भगवान को संपूर्ण रूप से देखा और पाया है, वो जरा हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। लेकिन बाबा हमेशा यही कहते हैं, बच्चे, मेरे बच्चे भी मुझे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। देख लेने में भी सब कुछ नहीं देखा जाता, जान लेने में भी सब कुछ नहीं जाना जाता। जिस आत्मा ने जितनी कोशिश की, जितना पुरुषार्थ किया, जितना महसूस करने की कोशिश की, उस पुरुषार्थ के अनुसार ही हमें बाबा की प्राप्ति अनुभूति होती है। लेकिन ये सत्य है कि दुनिया ने जिसने भी मेहनत की है, उसे भगवान के उपस्थिति का, भगवान के होने का थोड़ा बहुत आभास जरूर है। पर हमें प्रिविलेज जो बहुत स्पेशल मिला है वो ये है कि सृष्टि के अंत में जब वो परमात्मा धरा पृष्ठ पे आते हैं, उनकी दया की दृष्टि हम पे पड़ी। बाबा तो ऐसा भी नहीं कहते हैं, बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम बच्चों की मुझे जरूरत है, तो मैंने अपने जरूरत के हिसाब से तुम्हें अपना बनाया है। वो उनकी क्या कहे, महानता है, जैसा भी है वो तो प्यार का सागर है, तो इसलिए अपनी महानता से ये बोलते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम्हें मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे हो। और बाबा ने हमें इतने ऊंचे स्वमान दिए हैं, बहुत ज्यादा। पर जिस बारे में आज बात करनी है वो ये है कि भगवान के मिलने के बाद क्या क्या कर रहे हैं हम, भगवान को पाने के बाद क्या कर रहे हैं।
मिलने के बाद, पाने के बाद यही कर रहे हैं कि जहाँ कहाँ मंदिरों में जाते थे, कोई साधु संतों के पास जाते थे, गीता भागवत सुनने का शौक रहता था, किसी से मिलने का, बड़ों से मिलने का शौक, महात्माओं से मिलने का शौक रहता था, वो अब नहीं है। कि मेरे भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई शास्त्र भी नहीं है, कोई साधु संत भी नहीं है, कोई महात्मा विद्वान भी नहीं है, कोई थी नहीं है भगवान से बड़ा, तो वो सारा भटकना बंद हो
गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, माता जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये उनका अनुभव, बहुत सुंदर। और भी जो अपना अनुभव सुनाना चाहे, भगवान को मिलने के बाद क्या।
एक बार बात विचार हो गई, ऐसी हमारी स्थिति अब हो गई है, हम भटक भटक के भगवान को ढूंढते थे,
अब मिल गया, पकड़ लिया है जोर से, बाबा मेरा, मैं बाबा का। हाँ, सबसे बड़ी बात है वही नहीं हमें छोड़ते हैं, हम क्या उनको छोड़े। हाँ, बहुत अच्छा। और अनुभव सुनाइए, माताएं कुछ कहेंगी। हाँ जी, हाँ, जो कुछ करते थे भक्ति मार्ग में वो सारा छोड़ दिया है। और ये भी बहुत सुंदर, अस्मिता बहन का गीत आया ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो भगवान के साथ होने से दुनिया की कोई भी बात हमें बड़ी नहीं लगती है, कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगता है, बड़ा आनंद आता है हर बात में। ये ठीक, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर, अमृत वेला उठाता भी भगवान आकर के है, तो ये बाबा के मिलने के बाद की एक उपलब्धि है। शास्त्रों में किसी को भगवान के मिलने की कहानियां हैं, किसी को भगवान मिला है शास्त्रों में, किसी को भगवान मिला हो शास्त्रों में, ऐसा नहीं सुना है। प्रहलाद को भगवान मिला था ना, हाँ, और शबरी को भगवान मिले, ध्रुव को भगवान मिला, मीरा बाई को भगवान मिले और नरसिंह मेहता को भगवान मिले, तुलसीदास को भी भगवान मिले, नामदेव को, संतों को मिले। और शास्त्रों की बात बताइए, एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुतों को मिला है भगवान, एक तो नहीं, शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं बहुत सारी आत्माओं को भगवान के मिलने की। लेकिन भगवान के मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? भगवान से मिलने के बाद कोई खत्म नहीं हो जाता है, किसी को मृत्यु नहीं मिलती है, कोई ज्योति ज्योत में नहीं समा जाता है, कोई परम धाम नहीं चला जाता है। भगवान के मिलने के बाद किसी की भी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई है, भक्त का एग्जिस्टेंस बनाए रखा हुआ है। शास्त्रों में ऐसे हजारों कहानियां हैं। रावण को भगवान मिले थे कि नहीं मिले थे? कुंभकर्ण को मिले थे कि नहीं? विभीषण को मिले थे कि नहीं? हाँ, हरेक को, बहुत जनों को, बहुत आत्माओं को भगवान मिले, जिन्होंने भगवान को पाने की थोड़ी भी भक्ति की। और सबसे जल्दी कौन मिल जाते? भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ बड़े भोले, जो थोड़ा सा बुला ले वो वहां पहुंच जाते और मिलाते। लेकिन भगवान के मिलने के बाद क्या होता है, ये हम कहानियों में सुनेंगे। अगर ये सारा स्पेक्ट्रम सुनाए, हजारों कहानियां हैं, लेकिन हाँ, दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल सुनाती हूँ, इस साइड से और उस साइड से। और ये कहानी सुन करके हमको ये फैसला करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, भगवान के मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ। पहले नेगेटिव वाली कहानी सुनाती हूँ। राक्षसों में एक मूर्ख राक्षस था, बुद्धू, उसका नाम था ब्रुक, ठीक है। और वो ब्रुक जो राक्षस था, उसे कोई भी काम ठीक नहीं होता था, लोग उसे ताना देते थे, अपने जिंदगी से बड़ा परेशान था। तो एक दिन उसे नारद जी मिल गए। तो ब्रुक ने कहा, नारद जी, मेरे को जीने का और कोई इच्छा नहीं रह गई है, मैं मर जाना चाहता हूँ। कहा, क्यों? तो अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता हूँ, बुद्धू हूँ, मेरा इतना बुद्धि नहीं है और लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। नारद जी ने उन्हें कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तुम उनकी तपस्या करो और तपस्या से जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, अच्छा जीवन जी लेना। ब्रुक कैसा राक्षस था? बुद्धू, मूर्ख था, और था क्या, राक्षस था। पर नारद जी की बात उसे पसंद आ गई और एक मन एक प्राण लगा करके तपस्या करने लग गया, पंचाक्षरी मंत्र गाने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, और फिर क्या हुआ होगा? भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, ठीक है। और ब्रुक ने आंखें खोली, देखा सामने कौन, भोलेनाथ खुद आकर के खड़े हैं। भक्ति में तो भगवान ऐसे ही है ना, देहधारी भगवान है, तो इसलिए भोलेनाथ सामने आकर के खड़े हो गए। कहा, ब्रुक क्या मांगना है, मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। उसे विश्वास नहीं हो गए, क्या भगवान इतनी जल्दी आ गए, मैंने ऐसी तपस्या कर ली, इसका मतलब मैं बहुत महान हूँ, तभी तो भगवान आ गए हैं। फिर भगवान ने कहा, ब्रुक ये मैं हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तथास्तु करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे इस भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो ब्रुक ने कहा, क्या मांगू, भगवान दे रहे हैं, क्या मांगू। कौन था ब्रुक? कैसा राक्षस? बुद्धू राक्षस, जो आवे वो मांगेगा। तो उसने कहा, अच्छा, क्या भगवान ऐसा करिए, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। सुना, बुद्धू और राक्षस दोनों वृत्तियां मिलकर के उसने क्या मांग लिया भगवान से, पाया भगवान को, मांगा क्या, भस्म करने का अधिकार मांग लिया। भगवान ने कहा, ब्रुक तुमने सोचा, ठीक से सोचा ना? हाँ हाँ, सोच लिया है, आप मुझे फाइनली ये दे देते हैं तो बहुत अच्छा। कहा, अच्छा ठीक है, फाइनली तुम्हें दे देता हूँ, तथास्तु। क्या ब्रुक को वरदान मिल गया? ब्रुक ने देखा एक चींटा वहां से जा रहा है, मकोड़ा, तो उसने उसके सिर पे हाथ लगा के देखा, क्या हुआ होगा, बस, अरे वाह, कहीं तो चींटा भस्म हो गया सचमुच। फिर देखा तो एक छिपकली जा रही थी, उसके सिर पे हाथ लगाया, कहीं तो बड़ा जानवर भी जा रहा है। उसके बाद एक हिरन को देखा, उसके सिर पे हाथ लगा दिया, वो भी भस्म। तो कहा अच्छा, तो महादेव ने तो बहुत बड़ी मुझे बड़ा वरदान दे दिया है। तो कहा ये छोटा जानवर मरता है कि उससे भी ज्यादा बड़ा। तो एक भैंसा जा रहा था बहुत बड़ा, उसके सिर पे हाथ लगा दिया, वो भस्म हो गया। कहा बस ये जानवरों तक सीमित है कि मनुष्य भी मरेगा। आगे गया देखा एक कुछ सन्यासी लोग तपस्या कर रहे थे, तो वहां जाके किसी सन्यासी के सिर पे हाथ रखा, सब सन्यासी डर के मारे, कहा भस्मासुर आ गया, भस्मासुर। ठीक है, और ब्रुक को कैसा लगा होगा? बड़ा अच्छा लगा, एक ही दिन में प्रमोशन। क्या प्रमोशन? वो ब्रुक से भस्मासुर बन गया। तो उसे अपने नाम पे बड़ा नाज होने लग गया, कहा अच्छा मैं तो भस्मासुर हूँ, क्या बात है, कोई साधारण प्राणी नहीं हूँ मैं, कोई ब्रुक ब्रक नहीं हूँ, मैं भस्मासुर हूँ। गया ऊपर, कहा कि ये खाली मनुष्य आत्माओं के लिए ही है, मनुष्य भस्म होता है कि देवताएं भी भस्म होंगे। तो इंद्रलोक में पहुंच गया, जो दरवाजे पे खड़ा था देवता, उसके सिर पे हाथ रख दिया, बस सब देवताएं भागे डर के। और इंद्र भी जो बैठे हुए थे ना इंद्रासन में, वो भी भागे भस्मासुर से डर के, भस्मासुर आया भस्मासुर। तो उसे तो बड़ा आनंद आ गया, कहा अब तो जिसके सिर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएंगे। लेकिन इंद्र के दरबार में नारद जी भी आए थे, नारद जी सामने आ गए और कहा ब्रुक तुम्हें वरदान मिल गया ना, क्या वरदान लिया, यही देखो जिसके सिर पे हाथ रखता हूँ भस्म हो जाता है, मैं तो भस्मासुर बन गया हूँ। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे भी भस्म करोगे? नहीं 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 महाराज, मैं आपको भस्म नहीं करूंगा, आपने तो मुझे रास्ता दिखाया। कहा लेकिन अभी भी जो कहूंगा वो करोगे? ना हाँ करूंगा। कहा देखो अब इंद्र ने तो आसन छोड़ दिया, तो तुम्हें तो अब इंद्र बन जाना चाहिए, और इंद्र बनोगे भस्म कर दिया होगा देवताओं को, तो किस पे राज करोगे? इसलिए तुम इंद्र बन जाओ और देवताओं को भस्म करना छोड़ दो। भस्मासुर ने कहा ठीक है, लेकिन जैसे इंद्रासन में बैठा तो देखा पास वाली सीट खाली है, इंद्राणी नहीं है। तो इंद्र बनेगा तो इंद्राणी भी चाहिए, तो कहा दुनिया की सबसे सुंदर जो नारी है उसको इंद्राणी बनाऊंगा। तो सारी दुनिया को वहां इंद्रासन में बैठ के तो सब कुछ देखा जा सकता है, तीनों लोगों को देखा, तो सबसे सुंदर नारी कौन दिखाई दी? पार्वती दिखाई दी। तो कहा इंद्राणी तो पार्वती को बनना चाहिए, पर रास्ते में एक रोड़ा है। क्या रोड़ा है? भोलेनाथ भगवान खुद, जब तक भोलेनाथ हैं तब तक पार्वती मेरी इंद्राणी नहीं बनेंगी। तो अगर मुझे पार्वती को इंद्राणी बनाना है तो क्या करना होगा? हाँ, भोलेनाथ को भस्म करना होगा। ठीक है, और अब ब्रुक भस्मासुर किसके पास गया है? भोलेनाथ के पास गया। भगवान ने कहा अरे ब्रुक तुम आए हो? नहीं 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 भगवान, आप जरा गलती कर रहे हैं, मैं ब्रुक नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं भस्मासुर हूँ, भस्मासुर। अच्छा ठीक है ब्रुक, क्या बात है बोलो। नहीं नहीं नहीं, पहले आप अपनी गलती सुधारिए। कौन सी? मुझे भस्मासुर बोलिए ना। अच्छा ठीक है भस्मासुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने अपने आने का आशय बताया। कहा भगवान मैंने देख लिया है कि आपके आशीर्वाद से मैं मनुष्यों को भस्म कर सकता हूँ, देवताओं को भी भस्म कर सकता हूँ, लेकिन आज ये जानने आया हूँ कि आपके आशीर्वाद से क्या स्वयं आपको मैं भस्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। भोलेनाथ ने तो क्या दिया है आशीर्वाद? क्या दिया है? जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म होगा। तो उसमें मैंने अपने आप को एक्सक्लूड किया नहीं, तो कहा ये तो सत्य है कि तुम मेरे सिर पे भी हाथ रखोगे। तो कहा आजमा के देख लो। सुना क्या कहा भोलेनाथ ने? आजमा के देख लो। तो शास्त्रकारों ने लिखा है ब्रुक भस्मासुर क्या करने चला है? आजमाने चला है। क्या आजमाने चला है? कि जिस भगवान ने मुझे वरदान दिया, जिसको मैंने पाया, क्या मैं उसको भस्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और इस बात को लेके, इसके बाद के इवेंट को लेके शास्त्रकारों में दो मत है। एक तो कहते हैं कि जैसे वो भोलेनाथ के पीछे भागा तो भोलेनाथ भी उठ के भागने लग गए, लेकिन दूसरे शास्त्रकार कहते नहीं, जैसे ही वो जाता है भोलेनाथ के सिर पे हाथ रखने के लिए, तो उस समय ब्रह्मा विष्णु दोनों बैठे हुए होते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि को रोक लिया, वक्त को, समय को रोक लिया, तो वृक वही खड़ा भाग रहा है लेकिन भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है। और तब तक विष्णु जी एक नया आइडिया लेके आते हैं। क्या आइडिया लेके आते हैं? मोहिनी रूप धारण करके आए और कहा कि ब्रुक ने देखा कि पार्वती से भी ज्यादा सुंदर नारी उनके सामने है, तो कहा कि भोलेनाथ को अब क्यों मारने का, छोड़ो, भगवान है, उन्होंने मुझे, मेरे ऊपर इतनी दया की तो मुझे भी उन पे दया करके उनको छोड़ देना चाहिए, और मैं इंद्राणी बनाने के लिए मोहिनी, ये जो मेरे सामने जो नारी है उसको ले सकता हूँ। तो जाके उसने कहा कि भाई आप मेरी इंद्राणी बनोगी? तो उसने कहा बनने के लिए मैं तो तैयार हूँ इंद्राणी, लेकिन मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरे जैसा नृत्य भंगिमा कर सकता हो। तो कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर सकता हूँ। कहा ठीक है, जैसा मैं नृत्य भंगिमा करूं, जो एक्शन करूं, तुम्हें भी वही एक्शन करना है। कहा ठीक है, हाँ, तो सभी जानते हैं कहानी, ठीक है कि नहीं? तो उसने अलग अलग एक्टिंग करके फाइनली क्या एक्टिंग किया, हाँ, और भस्मासुर ने क्या किया, अपने सिर पे हाथ रखा, फिर क्या हुआ? सुना, भस्मासुर को भगवान मिले थे कि नहीं मिले थे? भगवान मिले थे। अब भगवान के मिलने को उसने क्या किया, कैसे यूज किया, शक्ति को हमने देख लिया, ठीक है कि नहीं? और एक दूसरा एक्सट्रीम है, भगवान को पाके किसने क्या किया, ये कहानी है ध्रुव की। ध्रुव की कहानी सुनी है? सुनी है ध्रुव की कहानी? हमें ये कहानी बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है, और जितनी बार इसको सुनते हैं, सुनाते हैं, इसके बारे में विचार मनन करते हैं, हमें बाबा पे बड़ा प्यार आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान को पाने के बाद अगर कुछ बनना है तो ध्रुव जैसा बन जाना है। क्या है ये कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना कहानी सुन के? ठीक, मुझे कहानियां सुनाना, सुनना बहुत पसंद है बचपन से ही, और मैं उससे रिलेट करती हूँ अपने आप को। और हमेशा मेरा अनुभव ये कहता, ज्ञान की गुहिया बातें कुछ याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां नहीं भूलती हैं। और कहानियों को याद करके अगर आप अपने आप को रिलेट करेंगे तो अपने आप एक मनन चिंतन टर्निंग चलती है, और एक जिस फीलिंग तक, जिस स्थिति तक हम पहुंचना चाहें वहां तक पहुंच सकते हैं। अब कहानी ध्रुव की है। 5 साल का ध्रुव, माता सुनीति का बेटा, उसको दूसरी माता है सुरुचि, और पिता का नाम क्या है? उत्थानपाद, राजा उत्थानपाद का बेटा। राजा उत्थानपाद युद्ध के लिए गए हुए थे, वापस आए हैं, तो सबसे पहला अधिकार उनके गोद में बैठने का किसका है? ध्रुव का है। लेकिन तब तक माता सुनीति को भी एक बेटा है, और पिता उत्थानपाद सुनीति माता के घर में गए हैं, तो बच्चा गया कौन? ध्रुव, और जाके पिता के गोद में बैठ गया, जिसपे उसका संपूर्ण अधिकार है। जब वो पिता की गोद में बैठा, माता सुनीति ने कहा, ध्रुव तुम्हें इस गोद में बैठने का अब कोई अधिकार नहीं रहा। क्यों, इस गोद में अब कौन बैठेगा? अब मेरा बेटा, हाँ, पिता की गोद में बैठेगा, तुम उतर जाओ। बोले ध्रुव ने कहा, माता अगर मैं इस पिता की गोद में नहीं बैठूंगा तो मैं कहाँ बैठूं? मुझे भी गोद में बैठने की इच्छा है, तो मैं किसके गोद में बैठूं? माता सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें बैठना ही है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठो। कहा, माता लेकिन मुझे नहीं पता भगवान विष्णु कहाँ रहते, मैं उन्हें कैसे पाऊंगा? कहा, बहुत सहज है, तुम जंगल में जाके तपस्या करो, अगर तुम सच्चे दिल से तपस्या करोगे तो भगवान विष्णु जरूर तुम्हें अपने गोद में बिठाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सच्ची माता ये बड़ी बात नहीं है। क्या मैं सचमुच विष्णु भगवान के गोद में बैठ सकता हूँ? बैठ सकते हो। ध्रुव ने वहीं से छुट्टी ली, दूर से अपनी माता को प्रणाम किया और निकल पड़े कहाँ? भगवान विष्णु की गोद में बैठने के लिए। जंगल में तपस्या किया, क्योंकि उनकी तीव्र प्रबल इच्छा तपस्या, तो क्या हुआ, उन्हें मार्ग मिलता गया आगे कैसे जाएं। सच्चे गुरु मिले जिन्होंने उन्हें भगवान का नाम स्मरण करने की विधि बताई, योग करना सिखाया, तपस्या करना सिखाया। और ध्रुव गहरे जंगल और गहरे जंगल में गए। छोटा सा बालक, नन्हा सा, भोला सा, और गया कहाँ है? जंगल में, जहाँ कौन है? भालू है, शेर है, बाघ है, चीता है, हाँ सब खूंखार जानवर हैं। उनके तो किसी का नाश्ता होने में भी छोटा रहे ऐसा है, कोई भी कभी खा सकता था उसको, लेकिन किसी ने खाया? खरोंच तक भी नहीं आई। पर गहन तपस्या से हाँ एकदम तांबा वन हो गया है, और धूप नहीं, गर्मी नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, पवन नहीं, नदी नहीं, नाला नहीं, किसी चीज का खौफ किए बिना ध्रुव कहाँ चले हैं? भगवान से मिलने चले हैं। उसको संपूर्ण निश्चय है कि माता सुरुचि ने क्या कहा है, तुम्हें भगवान की गोद में बैठने को जरूर मिलेगा, मैं भगवान विष्णु की गोद में बैठूंगा, ये आशा लेकर के वो गहन तपस्या में चले गए हैं। साधना, उसके आगे की साधना, उससे आगे की साधना, साधना की एक लिमिट पूरी हुई। जब उनकी साधना संपन्न हुई तो एक दिन उन्होंने महसूस किया, कुछ अलौकिक महसूस था, हा? और इस अलौकिक अनुभूति को करते हुए ध्रुव ने आंखें खोली। क्या देखा? कि वो भगवान की गोद में बैठा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये भक्त और भगवान के मिलन में जितना प्रसन्न भक्त था, उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्न कौन थे? भगवान थे। दोनों के प्रेम अश्रु बह रहे हैं एक दूसरे को देख करके, खूब आनंदित हैं। भगवान तृप्त हैं भक्त को गोद में बिठा के, और भक्त का तो कहना ही क्या, उसकी तो सारी मनोकामनाएं, सारी आशाएं पूर्ण हो रही है। ठीक है, सोचिए कैसा लग रहा होगा। ठीक, बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? भगवान की गोद में बैठे। और जब ये आनंदाश्रु पूरा हुआ, मेल मिलाप पूरा हुआ, तृप्त, तब भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो चाहिए, मैं तथास्तु करने के लिए उतावला हो रहा हूं, मुझे बहुत जल्दी है, मैं बहुत खुश हूं और इच्छा रखता हूं कि तुम जो कुछ मांगो उसके लिए तथास्तु कहूं। इसलिए हे ध्रुव मांगो, क्या मांगना है? ध्रुव ने क्या मांगा होगा बताइए? अरहर स्थान मांगा, और क्या मांगा? ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा होगा बताइए? राजा बना दो मुझे, अधिराज बना दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, अच्छी सी रानी दे दो, और क्या मांगा होगा? आपके गोद में ही बैठा रहूं, फिर सृष्टि का क्या होगा, भगवान जी तो वहीं बिजी हो जाएंगे, तो मुश्किल वो भी, क्या मांगा होगा बताइए? ध्रुव ने कहा, प्रभु जहाँ मैं बैठा हूँ उससे आगे और क्या पाना है? पाना था सो पा लिया। मेरी एक ही इच्छा थी, क्या इच्छा थी? भगवान की गोद में बैठूं, मैंने उसका सुख पा लिया, मुझे और इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा जो कहता है, बच्चों की स्थिति क्या हो, पाना था सो پا لیا, اب کیا باقی رہا؟ کچھ بھی تو پانے کو نہیں رہ گیا ہے کچھ, اب کیا کسی سے مانگوں؟ ہاں تجھے چاہنے کے بعد, سنا ہے نا وہ گیت, کون سا, سب کچھ تو مل گیا ہے تجھے پانے کے بعد, اب کیا کسی سے مانگوں تجھے پانے کے بعد. ہاں تو بابا کو پانے کے بعد, بھگوان کے ملنے کے بعد مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. بھگوان ایسے بھکت کو دیکھ کر کے بہت خوش, آنند اشرو آ گئے پھر سے, کہا لیکن دھروپ یہ میرے بھگوان ہونے کی ایک مریادا ہے کہ جب کوئی بھگت اپنی بھکتی سے اپنی سادھنا سے مجھے پراپت کرتا ہے اسے کچھ مانگنا ہوتا ہے اور مجھے تتھاستو کرنا ہوتا ہے, اس لیے تمہیں مانگنا پڑے گا, تم مانگو تمہیں کیا چاہیے. بھگوان دینے کے لیے لو لو کر رہے ہیں اور دھروپ نہ کر رہا ہے کہ بھگوان مجھے کچھ نہیں چاہیے, سب کچھ پا لیا. نہیں دھروپ تمہیں لینا ہی ہوگا. تب دھروپ نے کچھ مانگا, کیا مانگا ہوگا بتائیے. بابا مجھ سے کہے کہ بچے تمہیں کیا چاہیے, بولو کیا چاہیے. بڑھیا سا سینٹر چاہیے, خوب سارے اسٹوڈینٹس چاہیے, اور بہت اچھی اچھی وی آئی پی سیوا ہو بابا, ہاں اور سب لوگ بہت اچھی طرح سے تالی بجائیں, واہ کیا دیدی ملی ہے, یہ سب چاہیے ہاں کہ نہیں. تو یہ مانگنا چاہیے بابا سے, بابا دے دو. ہاں کیا مانگنا چاہیے بتاؤ, مانگنے سے نہیں دیتے ہیں پھر کیسے دیتے ہیں. اب یہ تو ملا ہے نا آپ کی سادھنا سے, آپ کی تپسیا سے ملے ہیں, جو مانگو گے وہ تتھاستو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. دھروپ نے کیا مانگا ہوگا, بھگوان نے اسے کیسے دیا ہوگا بتائیے. وہ بھاگیرتھی تھی دھروپ, ود مانگے مل گیا. ایک رستھتی چاہیے, نہیں وہ اس کو کیسے ملا ہے میں بتاتی ہوں. جو آپ سنا رہے ہیں وہ بھی کسی شاستکار نے لکھا ہوگا, لیکن دھروپ کی کہانی بہت ہی سندر بڑی اچھی ہے. جو آتماؤں نے بھگوان کو پایا ہے وہ اس کہانی کو بڑی باریکی سے سنیں سمجھیں اور اسے انوبھو بھی کریں اور دیکھیں کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں, وہاں تک پہنچنا ہے. دھروپ نے بہت سوچا اس کے بعد کہا, بچپن میں ایک شاعری مجھے بہت پسند ہے, کئی بار مدھوبن میں سنایا ہوگا, پرانوں نے سنا بھی ہوگا بہت بار, بہت 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 پسند ہے. وہ ایسا ہے, مالک تیری رضا رہے اور بس تو ہی تو رہے, نہ کہیں میں رہوں نہ میری آرزو رہے. سنا, مالک تیری رضا رہے اور بس تو ہی تو رہے, نہ کہیں میں رہوں نہ میری آرزو رہے. اس سنسار میں ہے پربھو کیول تم رہو, تمہاری اچھا رہے, میری کوئی اپنی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, میں کیا اچھا کروں. بابا جو نہیں کہتے ہیں, بچے تمہیں تو مانگنے کی بھی عقل نہیں تھی, کیا مانگنا آتا تھا؟ ہے بھگوان گاڑی دے دو, گھڑی دے دو, بیٹا دے دو, پوتا دے دو, ناتی دے دو, یہی مانگتے تھے اور کیا مانگتے تھے. مانگنا آتا تھا بھگوان سے, پتا تھا کہ ہم کو اس ورگ میں جا کر کے وشو مہاراجن مہارانی بنیں گے, ایسا کچھ آتا تھا؟ مانگنا بھی نہیں آتا تھا. تو دھروپ بڑا بدھیوان تھا, دیویہ بدھیوان تھا. اس نے کہا, پربھو میں کیا مانگوں آپ سے, مجھے کہاں مانگنے کی عقل ہے, مجھے کیا پتا دنیا میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا میرے لیے یوگیہ ہے کیا میرے لیے یوگیہ نہیں ہے. تو اس لیے ہے پربھو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اچھا میرے دوارا پوری ہو. سنا, میں آپ کے لیے انسٹرومینٹ بنوں, بابا آپ کی پرتیکشتا میرے دوارا ہو, میں آپ کو پرتیکش کرنے کے لیے انسٹرومینٹ بن جاؤں, جہاں آپ کو اس انسٹرومینٹ کی جس طرح کی ضرورت ہے اس پرکار سے یوز کرو, ایسا دھروپ نے مانگا. سنا, ہماری بھاشا میں, براہمنوں کی بھاشا میں, دنیا کی بھاشا میں کیا مانگا, کہ ہے پربھو जो आपकी इच्छा है, जो आप संसार में करना चाहते हैं, वो मेरे द्वारा पूरी हो। मैं आपका मैसेज दूं, मैं आपका संदेश दूं दुनिया को, और जिस राह में दुनिया को आप चलाना चाहते हो, मैं उन्हें वो रास्ता बता सकूं। ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा तथास्तु करो, ऐसा वरदान दो। ये ध्रुव ने भगवान से मांगा। भगवान को कैसा लगा होगा? जितना प्यार आ चुका था भगवान को ध्रुव से, उसकी तपस्या को देख के, उसके भोलेपन को देख के, उसके डेडिकेशन को देख के, तो वो प्यार कई गुना बढ़ गया। कहा, ध्रुव तुमने ये क्या मांगा? ऐसी मांग, ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। मैं तुम्हारे इस मांगने से बहुत 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 प्रसन्न हूँ। ध्रुव, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। अब ध्रुव कहे, मैं क्या मांगू? कहा, मांगो ध्रुव, कुछ भी मांगो। ध्रुव ने सोचा कि ये एक भगवान का रिस्पेक्ट है, मुझे मांगना चाहिए। तो ध्रुव ने भगवान से दूसरा वरदान मांगा कि हे प्रभु, जिस माता ने मुझे ये रास्ता बताया, मुझे प्रेरणा दी, जिस कारण मैंने आज संसार के सबसे बड़े सुख को उपलब्ध किया है, सबसे बड़ी प्राप्ति को पाया है, मेरी उस माता का कल्याण हो। सुना, ये दूसरा वरदान मांगा। जैसे ही ये दूसरा वरदान ध्रुव ने मांगा, भगवान के प्रेम की सारे बांध टूट गई। सुना, और कहा, ध्रुव अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें देता हूं वरदान। कहा कि तुम ध्रुव तारा बन करके पूर्व गगन में हमेशा दीप्तमान रहोगे। संसार में सूरज के ढलते ही जैसे ही कोई व्यक्ति ऊपर आसमान को देखेगा, तो तुम हमेशा उसे दिखाई दोगे। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से ही नहीं, लेकिन तुम्हारे मांगने से भी प्रसन्न हूं, तुम्हारी अंतरात्मा से प्रसन्न हूं, तुम्हारी धारणाओं से प्रसन्न हूं। सुना, भगवान को पाने के बाद ऐसा भी होता है, कैसा? ध्रुव जैसा वैसा भी होता है, कैसा? मुझे क्या बनना है? जो चाहोगे वो पॉसिबल है। तुम ईश्वर की औलाद हो, जो सोचोगे वो कर सकोगे। जिस और तुम अपनी एनर्जी भेजोगे, वहां तुम्हें सफलता मिलेगा ही मिलेगा। क्या करना चाहते हो? बस कि कुछ ध्रुव बनना चाहते हो? तो मुझे हर पुरुषार्थी को अपने आप को देखना है कि मैं भगवान को पाने के बाद क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी इच्छा है, क्या मेरी चाहना है। क्या सोचता हूँ, किस प्रकार की मेरी वृत्ति है, क्या मेरी अनुभूतियां हैं, क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या मेरी जीवनचर्या है। भगवान को पाने के बाद हर कोई मोक्ष को पाले ऐसा नहीं होता है, हर कोई ऊंचे आसन पे बैठ जाए ऐसा भी नहीं होता है। भगवान को पाने के बाद भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या है महत्वपूर्ण? पुरुषार्थ है। भगवान को पाने के बाद भी महत्वपूर्ण क्या है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के आधार पर ही प्रारब्धि मिलती है। भगवान चाह के भी हमें कुछ उड़ेल नहीं सकते हैं, वो उनकी भगवान होने की मर्यादा है। वो हमारी वृत्ति, वो हमारी अनुभूति, वो हमारा पुरुषार्थ हमें वो सब कुछ देता है जो हम डिजर्व कर रहे हैं, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। तब सोचना है, मैं भगवान को पाने के बाद क्या करता हूँ। ठीक है, कल अमृत वेले अपने आप से बात करेंगे। क्या चाहिए बाबा पूछे बच्चे, क्या चाहिए बोलो, मैं तथास्तु करूं तो मुझे क्या चाहिए, और भगवान के मिलने के बाद मुझे क्या करना है, कर क्या रहा हूं। सुना, तो ये देखना है। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं जो मधुबन में हैं, सेवा के हिसाब से आए हैं, चाहे कुछ समय रहने के लिए आए हैं। ये धरनी हाँ बहुत बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं, शुरू शुरू में बहुत समय तक, अभी शायद थोड़ा सा छूट गया है, जैसे ही हम मधुबन आते थे ना, पहले ये पक्का जो सीमेंटेड नहीं था मधुबन, हाँ मतलब ये आंगन बाबा का मिट्टी था, तो हम क्या करते थे, आते ही उस मिट्टी को सिर पे लगाते थे, और बड़ा अच्छा ये लगता था कि देखो शिव बाबा जब धरती पे आते हैं तो उन्हें भी एक शरीर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन सा शरीर? वो तो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो जो शरीर मिला वही तो उनका शरीर है, वही उनके पांव हैं। तो यही वो भूमि है जहाँ पे उनके चरण सबसे ज्यादा लगे होंगे, है कि नहीं? और बाबा की इस भूमि की मिट्टी का भी बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो मैं बहुत प्यार आता, पहले तो यही सब्जियां बनती थी, यही क्या कटती थी, भोजन यहाँ करते थे, राशन यहाँ चुकते थे, और तब क्या कहे, मिट्टी भी था। तो उस समय ही जैसे उस वो जो भावना अभी तक भी है कि यही वो भूमि है जो भगवान की अपनी कर्म भूमि है। सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यहाँ हर आत्मा जो जैसा पुरुषार्थ करना चाहे, बाबा जैसे साथ साथ है मदद करने के लिए हमेशा। हर एक की यही अनुभूति है ना, बहुत बहुत बहुत। और अगर मैं सो जाना चाहूँ तो भी बाबा बड़े प्यार से सुला देने के लिए भी तैयार है, बाबा इतना मीठा है। लेकिन प्राप्ति पुरुषार्थ के हिसाब से होगी हाँ, और ऑटोमेटिकली ऊंची स्थिति बन जाती है यहाँ, ऑटोमेटिकली बाबा के शांति स्तंभ में बैठो, योग लग जाता है, बाबा के कमरे में बैठो, बात करने को दिल होती है बाबा से, होती है कि नहीं होती? अपने आप बातचीत शुरू हो जाता है। झोपड़ी में चले जाओ, लगता है कि दिल की सारी बात बाबा को लिख के दे दे, हाँ आता है कि नहीं? ऐसे प्रेरणा आता है बाबा से, जैसे पत्र व्यवहार, और दिल की हर बात लिखत में चली जाए। तो हमें तो मधुबन का बहुत बहुत प्यार है, बड़े भाग्यवान रहे कि मधुबन की भूमि का बहुत प्यार मिला, और हर एक बार जैसे साकार हो जाती, दादी जी कुछ थोड़ा भी होता तो सबको बुला के बाबा के कमरे में ले जाती और बाबा से ऐसे ही बात करती, बाबा ये बात ऐसी आ गई है, अब क्या करना है बताओ, ऐसा करें? हाँ, तो इस प्रकार से बात करती थी। तो जैसे वो स्मृतियां ऐसे कहती है कि यहाँ बाबा बिल्कुल कान खोल के बैठे हुए हैं, जो भी बात करना है बातचीत करो, और जैसे बाबा से कनेक्ट होना है तो सारे ऑप्शंस ओपन हैं। थोड़ा थोड़ी भी मेहनत किया, थोड़ी इच्छा शक्ति जागृत हुई कि बाबा अब मुझे आपसे बात करनी है, बैठ जाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे बाबा पास में हैं और बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी बहुत बहुत लाभ उठाएं मधुबन में रहने का, जितने पल भी यहाँ हैं, हाँ बाबा के पूरे सानिध्य का लाभ लें, पूरा प्यार लें, भरपूर होकर के जाएं। एक बार हाँ ऐसे ही दृष्टि डाल दो तो, कभी दादियां यहाँ रहती थी, पता है ये जो बड़ी बड़ी दादियां हैं, मनोहर दादी का कमरा इतना सा, हाँ दादी रतन मोहिनी जी, गुलजार दादी, यहाँ बड़ी दादी, उधर मोहिनी दीदी, और सब दादी दीदियां इतने सही जगह में यहाँ रहते थे, और अमृत वेले का योग यहाँ होता था ना, सब लोग आते थे यहाँ पे योग करने के लिए। और उससे पहले जिन्होंने देखा है, बाबा खुद यहाँ क्लास कराते थे, मम्मा यहाँ थी, सभी दादी दीदियां यहाँ थी, तो सभी महान आत्माओं ने जो कल्प वृक्ष की क्या कहें, सारे सृष्टि चक्र में जो आत्माएं महान रोल करने वाली हैं, कल्प वृक्ष की जड़े हैं जो, और क्या कहें, सत्युग के आदि के देवी देवताएं जो हैं, विश्व महाराजन महारानी, उन्होंने यहाँ तपस्या किया है। तो इसलिए इस भूमि का बहुत महत्व है, सभी बहुत लाभ लें। ओम शांति। बैठो बैठो।